नमस्कार भारत, आज है जनवरी की 15 तारीख, दिन सोमवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। भारत के दौरे पर आए इसराइली प्रधानमंत्री नेतन्याहू आज पीएम मोदी के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता, रक्षा और व्यापार एजेंडे में सबसे ऊपर।
डिफेंस प्रोडक्शन की बातचीत और आगे बढ़ेगी। मेक इन इंडिया भारत का जो एक प्रोग्राम है उसमें तहत भारत चाहता है बहुत सी चीजें जो वो इसराइल से खरीद रहा है वो चाहता है कि यहीं पे बने।
जस्टिस लोया की मौत के मामले में आया नया मोड़, बेटे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि पिता की मौत को लेकर उन्हें किसी तरह का संदेह नहीं।
फैमिली को बहुत तकलीफें हो रही है इन सब चीजों की वजह से। हमको कोई एलिगेशन नहीं है किसी पे भी, कुछ भी नहीं है। लाइक वी आर रियली पेन टू लाइक यू आर ऑलरेडी ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ दिस थिंग।
पाकिस्तान में बच्ची जैनब के बलात्कार और हत्या के मामले पर सुनिएगा वसीतुल्लाह खान की डायरी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार मोहम्मद शाहिद से। इसराइली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू अपने भारतीय दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंचे। आज वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे, साथ ही रक्षा और सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर होने वाली द्विपक्षीय वार्ता में भाग लेंगे। यरूशलेम में अपना दूतावास खोलने के अमरीकी फैसले के खिलाफ फलस्तीनी नेताओं की बैठक में फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निशाने पर लिया है। अब्बास ने इस कदम को सदी का तमाचा बताया है। उन्होंने कहा है कि वो पहले भी कह चुके हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप की इस योजना में फलस्तीनी लोग शामिल नहीं रहेंगे। अलकुद्स हमारे अरब की दुल्हन है। अलकुद्स को मिस्टर ट्रंप की टेबल पर एक ट्वीट से हटा दिया गया। यही वजह है कि आज हम ये चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि हमें अमरीकियों ने क्या दिया है और वे हमें आगे भविष्य में क्या देंगे। ये थे फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास के शब्द। हवाई में मिसाइल हमले की गलत चेतावनी जारी होने की जांच कर रहे एक अमरीकी अधिकारी ने कहा है कि इस तरह की गलती को रोकने के लिए राज्य में उचित सुरक्षा उपाय नहीं हैं। शनिवार को गलत चेतावनी के कारण एक आतंक सा फैल गया था। अमरीकी संघीय संचार आयोग के अध्यक्ष अजीत पई ने कहा है कि आगे से ऐसी घटना ना हो, इसको लेकर सरकारी अधिकारी मिलकर काम कर रहे हैं। सरकार के आर्थिक कदम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे युवाओं की भीड़ को तितर बितर करने के लिए ट्यूनीशिया में पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। राजधानी ट्यूनिस के एक गरीब जिले में राष्ट्रपति बेजी काइड एसएफजी के भाषण के बाद ये घटना हुई। इससे पहले राष्ट्रपति ने अपने भाषण में युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाने का वादा किया था। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। पेरू में 7.1 तीव्रता के भूकंप के बाद उसके राष्ट्रपति देश के दक्षिणी भाग में नुकसान का जायजा लेने के लिए रवाना हुए हैं। इस भूकंप में कम से कम एक शख्स की मौत हुई है जबकि 65 लोग घायल हैं। राष्ट्रपति पेड्रो पाब्लो कुचिंस्की ने कहा है कि अरेकीपा शहर में वो मदद भेजेंगे। राष्ट्रीय आपातकालीन संचालन केंद्र में हम लोग दोपहर में मिल रहे हैं जो इस तरह की त्रासदियों का केंद्रीय स्थान है, और हम जितना जल्दी हो सके उतनी तेजी से जवाब दे रहे हैं। सरकार इन मुद्दों पर काम कर रही है और इसी वजह से भूकंप के कुछ ही घंटों के बाद मैं यहाँ हूँ। ये थे पेरू के राष्ट्रपति पेड्रो पाब्लो कुचिंस्की के शब्द। शीतकालीन ओलंपिक में उत्तर कोरिया के भाग लेने को लेकर दक्षिण कोरिया का प्रतिनिधिमंडल उत्तर कोरिया के साथ बातचीत करने के लिए अपनी सीमा पर जा रहा है। अपना प्रतिनिधिमंडल भेजने के लिए पिछले हफ्ते उत्तर कोरिया सहमत हो गया था। उत्तर कोरिया के प्रतिभागी कैसे और किसके साथ आएंगे, ये बातचीत एक सीमावर्ती गाँव पमुंजम में होगी। 9 फरवरी से दक्षिण कोरिया के शहर प्योंगचैंग में शीतकालीन ओलंपिक की शुरुआत होगी। फिलीपींस प्रशासन ने चेतावनी दी है कि उसके देश का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी एक हफ्ते या कुछ दिनों के अंदर फूट सकता है। उत्तर पूर्वी प्रांत आलबे में मायोन ज्वालामुखी 24 घंटे भाप और राख को बाहर फेंक रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि ज्वालामुखी से ज्यादा चमक उठ रही है, जिसका अर्थ है कि खतरनाक लावा करीब ही है। खतरे वाली जगह के नज़दीक रह रहे 3,000 लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुँचा दिया गया है। आखिरी बार ये ज्वालामुखी 2014 में फूटा था। इराकी प्रधानमंत्री हैदर अल आबादी ने घोषणा की है वे विक्टर अलायंस नामक नए राजनीतिक गुट के प्रमुख के लिए मई में दोबारा होने वाले चुनाव में खड़े होंगे। 3 साल का सैन्य अभियान चलाकर इस्लामिक स्टेट को हराने से आबादी की स्थिति मजबूत हुई है। उनके नए राजनीतिक गठबंधन का इरादा सांप्रदायिक रास्ते तक पहुँचने का है। इसमें ईरान समर्थित शिया समूह भी है जिन्होंने आईएस के खिलाफ लड़ाई में मदद की थी। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं नमस्कार भारत रेडियो के साथ साथ bbchindi.com मोबाइल और फेसबुक पर लाइव और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत के दौरे पर आए इसराइली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू कल जब मिले तो ऐसा लगा कि दोनों नेताओं ने पिछले दिनों दोनों देशों के रिश्तों में आई कड़वाहट को दरकिनार कर दिया है। कुछ दिन पहले जब अमेरिका ने यरूशलम को इसराइल की राजधानी बनाने की घोषणा की थी तब संयुक्त राष्ट्र में भारत ने इसके खिलाफ लाए गए प्रस्ताव का समर्थन किया था। उसके बाद ऐसा लग रहा था कि यरूशलम को लेकर भारत के रुख का असर 15 साल में पहली बार भारत आने वाले किसी इसराइली प्रधानमंत्री के दौरे में नजर आएगा। लेकिन कल जिस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर इसराइली नेता का स्वागत किया उसने आशंकाओं को ऊपरी तौर पर खत्म कर दिया। आज प्रधानमंत्री नेतन्याहू राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने वाले हैं और फिर उसके बाद वो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रक्षा और व्यापार संबंधी मसलों पर बात करेंगे। सुनते हैं आदर्श राठौर की ये रिपोर्ट।
इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू कल 6 दिन के दौरे पर भारत पहुंच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़ा और उनके स्वागत के लिए दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। इसके बाद उन्होंने ट्वीट करके नेतन्याहू के भारत दौरे को ऐतिहासिक और खास बताते हुए कहा कि इससे दोनों देशों की दोस्ती और गहरी होगी। एयरपोर्ट से दोनों देशों के नेता 3 मूर्ति स्मारक पहुंचे और पहले विश्व युद्ध के दौरान हाइफा में मारे गए सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। इसके साथ ही 3 मूर्ति चौक का नाम बदलकर 3 मूर्ति हाइफा चौक रख दिया गया है। दरअसल 3 मूर्ति में लगी 3 कांसे की मूर्तियां हैदराबाद, जोधपुर और मैसूर लांसर्स को दर्शाती हैं, जिसके सैनिकों ने पहले विश्व युद्ध के दौरान हाइफा शहर में लड़ाई लड़ी थी। आज हाइफा इसराइल में है। कल विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी नेतन्याहू से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उन्होंने ट्वीट करके कहा कि रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए कई द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा की गई। इसके बाद कल रात को प्रधानमंत्री निवास 7 लोक कल्याण मार्ग पर बेन्यामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा ने रात्रि भोज किया। आज सुबह राष्ट्रपति भवन में इसराइल के प्रधानमंत्री का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। इसके बाद वो राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। इसराइली प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात भी आज ही होगी। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता होगी, जिसमें रक्षा और व्यापार समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
जानकारी दे रहे थे आदर्श राठौर। बेन्यामिन नेतन्याहू के भारत दौरे को लेकर आदर्श राठौर ने ही बात की मध्यपुर मामलों के जानकार कमर आगा से और सबसे पहले पूछा कि इस यात्रा का महत्व क्या है और भारत को क्या हासिल होगा।
देखिए, ये बाइलेटरल रिलेशंस हैं, दो पक्षीय है और बहुत ही अहम हैं दोनों देशों के लिए। हमको बहुत सी टेक्नोलॉजीज जो है इसराइल के पास, खासतौर से डिफेंस सेक्टर में या एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये वाटर डिसैलिनेशन, इरिगेशन और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कोऑपरेशन, कल्चर, हर चीज में तो तकरीबन 7 एरियाज आइडेंटिफाई किए थे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब वो इसराइल गए थे पिछले साल जुलाई के महीने में। उन्हीं को वो और आगे बढ़ाने का प्रयास है। ये तो 3 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। एक तो डिफेंस प्रोडक्शन की बातचीत और आगे बढ़ेगी। मेक इन इंडिया भारत का जो एक प्रोग्राम है उसमें तहत भारत चाहता है बहुत सी चीजें जो वो इसराइल से खरीद रहा है डिफेंस सेक्टर की, वो चाहता है कि यहीं पे बने। और उसके अलावा ये भी है कुछ चीजें जिसमें को प्रोडक्शन, यानी दोनों मिल के कुछ नए प्रोडक्ट बनाए डिफेंस के जो बाद में दूसरी जगह पे बेचेंगे। इसराइल के लिए अच्छा इस सेंस में है कि न तो उसके पास लेबर है इतना और जितना भारत में है, सस्ता लेबर है, टेक्निकल सेवी भी है, कंप्यूटर भी जानता है, अंग्रेजी भी बोलता है, सर्विस सेक्टर भी बहुत बड़ा है भारत का, भारत एक बड़ा मार्केट भी है उसके प्रोडक्ट का। $5 बिलियन का हम लोग का ट्रेड है जो उम्मीद की जा रही है बढ़ के जल्दी ही $10 बिलियन हो जाएगा, बल्कि आने वाले समय में और आगे भी बढ़ेगा। तो आतंकवाद एक मुद्दा है जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों देशों के लिए, उसके ऊपर भी बातचीत और आगे बढ़े।
जैसा कि आपने बताया कि ट्रेड है, मिलिट्री है, इंटेलिजेंस है, काफी इन फील्ड्स में बहुत कुछ मतलब उम्मीद करते हैं दोनों को बहुत फायदा होगा। लेकिन हम पर्टिकुलर बात करें जैसे कि कुछ एक स्पेसिफिकली कि इस बार के एजेंडे में ये चीजें महत्वपूर्ण है, तो वो कौन कौन सी चीजें होंगी?
देखिए, कई चीजें हैं। एक तो मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है, एंटी टैंक मिसाइल के ऊपर थोड़ा सा डिस्प्यूट भी है भारत में। बहुत से लोगों का मानना यह है कि यहीं पे बननी चाहिए, हमें इंपोर्ट नहीं करनी चाहिए, वो एक इशू है जो अनरिजॉल्व है। उसके अलावा कुछ नेवल से जुड़े हुए हैं, कुछ मिलिट्री के हैं और कुछ एयरफोर्स से रिलेटेड संबंध हैं, बहुत सी चीजें हैं इस तरह की। एक लंबी लिस्ट है, वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स की बात हुई थी और ड्रिप इरिगेशन फैसिलिटीज और बढ़ाने की है उस क्षेत्र में, उनसे तकनीक लेने की बातचीत चल रही है। अभी बहुत सी चीजें हैं जो पाइपलाइन में है, जो इसके ऊपर डिस्कशन हो रहा है।
जी, एक अहम सवाल ये कि जो मोदी सरकार है, इसकी जो इसराइल के प्रति नीति है वो पिछली सरकारों से किस तरह से अलग है?
साहब, ये जनसंघ के वक्त समय से ये लोग बीजेपी के लिए, बीजेपी के बाद में बीजेपी आई तब से ये लोग, सन 50 के दशक से ये लोग बात कर रहे हैं कि इसराइल से अच्छे संबंध होने चाहिए। हमारा जो सोर्स था मिलिट्री का पहले जो आता था वो सोवियत यूनियन था, या बाद में रशिया हुआ, उसके बाद उसका डाइवर्सिफिकेशन हुआ। और इसराइल काफी इम्पोर्टेंट बन जाता है इसलिए कि हमारा जो रास्ता है अमेरिका जाने का वो तेल अवीव होते हुए जाता है। पहले भारत ने तेल अवीव के साथ संबंध और अच्छे बनाए, फिर उसके बाद तेल अवीव की मदद से वहाँ की ज्यूइश लॉबी ने भी भारत की बड़ी मदद की भारत के संबंध अच्छे बनाने में। अमेरिका के अंदर भारत के संबंध दूसरी तरफ फिलिस्तीन से भी अच्छे हैं और वो फिलिस्तीन का भी समर्थन करता है, और हमारे दूसरे अरब देशों से भी है, ईरान से भी अच्छे संबंध है। दूसरी बात ये कि जब से इसराइल से संबंध हुआ अरबों ने कोई इस पे आपत्ति भी नहीं जताई।
ये थे मध्य पूर्व मामलों के जानकार कमर आगा, जिनका मानना है कि भारत और इसराइल कई मसलों में अहम पार्टनर बन सकते हैं और इसका लाभ दोनों ही देशों को मिलेगा।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 7430, 7565, 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
सीबीआई की विशेष अदालत के जज ब्रजगोपाल हरकिशन लोया की मौत के मामले में नया मोड़ आया है। जज लोया के बेटे अनुज लोया ने कहा है कि उन्हें पिता की मौत को लेकर किसी तरह का संदेह नहीं है और न ही उनके परिवार ने किसी पर आरोप लगाया है। उनका यह बयान उस समय आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने जज लोया की मौत के मामले को लेकर उठ रहे सवालों को गंभीर बताते हुए इस मामले पर सुनवाई शुरू कर दी है। जज लोया के बेटे के ताज़ा बयान के बाद किस तरह से घटनाक्रम बदले हैं, बीबीसी संवाददाता आदर्श राठौर बता रहे हैं इस रिपोर्ट में।
सीबीआई की विशेष अदालत के जज रहे ब्रजगोपाल हरकिशन लोया की मौत को लेकर उठ रहे सवालों के बीच रविवार को उनके बेटे अनुज लोया मीडिया के सामने आए और कहा कि उन्हें अपने पिता की मौत को लेकर किसी तरह का संदेह नहीं है। दरअसल पिछले दिनों द कैरवन पत्रिका ने जज लोया के रिश्तेदारों से बातचीत के आधार पर एक रिपोर्ट छापी थी। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि उनकी मौत की परिस्थितियां संदेहास्पद हैं। इसके बाद जज लोया की मौत की जाँच की मांग भी उठी थी, मगर अब जज लोया के बेटे अनुज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि परिवार का किसी पर भी आरोप नहीं है और उन्हें परेशान करना बंद किया जाना चाहिए।
आई वॉन्ट टू मेक इट क्लियर कि फैमिली को बहुत तकलीफें हो रही है इन सब चीजों की वजह से। हमको कोई एलिगेशन नहीं है किसी पे भी, कुछ भी नहीं है। लाइक वी आर रियली पेन टू, लाइक वी आर ऑलरेडी ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ दिस थिंग एंड आई रिक्वेस्ट यू पीपल लाइक प्लीज डोंट ट्राई टू हैरेस अस और ट्रबल अस। लाइक आई वॉन्ट टू कन्वे एवरीवन थ्रू योर मीडिया, सो दैट्स इट।
21 साल के अनुज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में वकील की मौजूदगी को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। जज लोया की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत वाली रिपोर्ट छापने वाली पत्रिका द कैरवन के राजनीतिक संपादक हरतोष सिंह बल ने बीबीसी से बातचीत करते हुए कहा कि परिवार के सदस्यों ने पहले बिना किसी दबाव के कैमरे के सामने अपनी बात रखी थी और बेटे ने एक चिट्ठी भी लिखी थी, मगर अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई वो वकीलों की मौजूदगी में की गई और पत्रकारों के सवालों के जवाब भी नहीं मिले।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जो एक लॉ फर्म ऑर्गेनाइज करती है, जिसमें जो मेन प्रत्याशी है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, उनको बोलने के लिए चांस ही नहीं दी जा रही है, ना ही सवाल एड्रेस करने की चांस दी जा रही है। जो मेन सवाल है कि आपने अपना दिमाग क्यों बदला, आपको क्यों लगता है कि अब ये चीजों की जरूरत नहीं है, आपको पहले सस्पेशन क्यों थी, किस कारण आपने सस्पेशंस उठाई थी, फैमिली अब तक क्यों ये सस्पेशंस को लेके चल रही थी, इसके बारे कोई जवाब नहीं दिया गया, ना जवाब देने दिया गया।
रविवार को हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब अनुज लोया से पूछा गया कि क्या वो अपने पिता की मौत की जांच चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि वो ये तय करने वाले कोई नहीं है। बता दें कि जज लोया की मौत की जांच को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में याचिकाएं डाली गई हैं और सुप्रीम कोर्ट इस मामले को गंभीर बता चुका है। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता तहसीन पूनावाला ने कहा,
उनके बेटे ने ये भी कहा कि उन्हें किसी भी जांच से ऑब्जेक्शन नहीं है और यही हमारी याचिका माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने है। जो कुछ भी घटना हुई है उसे ट्रांसपेरेंटली इसके सामने रखा जाए, जो कुछ भी सत्य है, जो कुछ भी तथ्य है, वो देश के सामने रखा जाए। एक चीज हमें जानना बहुत जरूरी है, ये लोहिया नाम की व्यक्ति की बात नहीं है, ये एक जज की बात चल रही है यहाँ पर। और ये इसलिए जरूरी है और ये इसलिए पब्लिक स्पिरिटेड है कि न्यायालय में हमारे जो आम आदमी उसका पूरी तरह से विश्वास है और ये कभी टूटना नहीं चाहिए।
जज लोहिया के बेटे की तरफ से बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके साथ मौजूद वकील अमीर नायक ने कहा कि परिवार नहीं चाहता कि इस मामले पर राजनीति हो और किसी को इसका फायदा हो। हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी जज लोहिया की मौत की जांच की मांग की थी। ऐसे में प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने बीबीसी से कहा कि जज लोहिया के बेटे की भावनाओं के साथ साथ उनके परिजनों की मांग को भी ध्यान में रखना चाहिए।
जस्टिस हर परिवार के साथ होना चाहिए और उन परिवार के साथ भी होना चाहिए जो लीगल सिस्टम से जुड़े हुए हैं। तो बाकी परिवारजनों का, जैसे उनके पिताजी हैं, माताजी हैं, उनकी बहनें हैं, उन्होंने भी अपनी पूरी स्टोरी में बताया था किस तरीके से उनको लगा था कहीं 19-20 था पूरे जो घटनाक्रम था, और आज उनके बेटे ने कहा है। तो उस सब चीज को ध्यान में रखते हुए अंतिम अंजाम तक पहुंचना बहुत जरूरी है।
जज लोहिया की मौत 1 दिसंबर 2014 को उस समय हुई थी जब वो एक शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए नागपुर गए थे। मौत से पहले वो गुजरात के चर्चित सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले की जांच कर रहे थे, जिसमें अन्य लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह भी अभियुक्त थे। अब ये केस खत्म हो चुका है और अमित शाह को दोषमुक्त करार दिया गया है। जज लोहिया की मौत के मामले को लेकर पिछले कई दिनों से चर्चा जारी है और अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को जज लोहिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। इस मामले पर मंगलवार को सुनवाई हो सकती है। आदर्श राठौर, बीबीसी दिल्ली।
सुप्रीम कोर्ट में पिछले कुछ दिनों से जारी संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश समेत 4 पूर्व जजों ने रविवार को चीफ जस्टिस दीपक मिश्र के नाम एक खुला पत्र लिखा है। पत्र में कहा गया है कि केसों का बंटवारा करने के मुख्य न्यायाधीश के विशेषाधिकार को और ज्यादा पारदर्शी और नियमित करने की जरूरत है। अब दिल्ली से निकलने वाले अखबारों में इस चिट्ठी को कैसे कवर किया गया है, ये बताने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ हैं मोहम्मद शाहिद। जी शाहिद
जी, अमरीश जी, इसको लेकर हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में खबर जो है उसमें बताया गया है कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज पीबी सावन, दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एपी शाह, मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व जज के चंद्रू और बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व जज एच सुरेश ने ये खत लिखा है मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नाम, और उन्होंने उसमें कहा है कि केस आवंटन का मसला न्यायपालिका में ही सुलझा लिया जाए। जो 4 जजों ने कहा था कि आवंटन का मसला है, तो उन्होंने कहा इसको न्यायपालिका में सुलझाएं। इसके अलावा इंडियन एक्सप्रेस और टाइम्स ऑफ इंडिया लिखता है कि पूर्व जजों का सुझाव है कि संवेदनशील और महत्वपूर्ण केसों को संवैधानिक पीठ को भेजा जाए। इससे इतर इसी केस के मसले पे बात करें तो टाइम्स ऑफ इंडिया की पहली लीड है, बड़ी खबर है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने हेडिंग दी है कि 15 अति संवेदनशील जो मामले हैं उनको 20 सालों से जो जूनियर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं उनको भेजा जाता रहा है। तो ये है, आते हैं दूसरी खबरों की ओर। इसराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कल आए हैं। एक तस्वीर हर अखबार के पहले पन्ने पर आपको दिखेगी, प्रधानमंत्री नेतन्याहू और प्रधानमंत्री मोदी दोनों बाहें फैलाए खड़े हैं, ना गले मिल रहे हैं ना मिले हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को बाहें फैलाते हुए देख रहे हैं। तो ये एक खबर है जो हर जगह है। साथ ही ब्रजमोहन लोहिया के बेटे अनुज लोहिया की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसकी खबर हर जगह है। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है कि बेटे ने कहा लोहिया की मौत प्राकृतिक थी, और नवभारत टाइम्स का शीर्षक है जज लोहिया की मौत संदिग्ध नहीं, बंद करें सियासत। इसके अलावा पद्मावत फिल्म पर जो काफ़ी विवाद हुआ है, इसमें देखने को मिला था कि इसके जो निर्देशक हैं संजय लीला भंसाली वो अभी तक चुप थे, वो कभी बोले नहीं। अब फिल्म जब रिलीज़ होने जा रही है 25 जनवरी को, तो इंडियन एक्सप्रेस ने खबर छापी है संजय लीला भंसाली के हवाले से, और वो बोलते हैं कि ये फिल्म राजपूत वीरता को श्रद्धांजलि है। और इसके अलावा कल रियलिटी शो बिग बॉस 11 जो था वो कल उसका परिणाम आ गया, उसकी खबर है कि अभिनेत्री शिल्पा शिंदे ने इसे जीत लिया है। वो हर अखबारों पर
जी, अखबारों की समीक्षा के लिए मोहम्मद शाहिद आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
खबर सच है अगर बीबीसी पर है।
पाकिस्तान का समाज कुछ दिन पहले हुई 7 साल की बच्ची जैनब के बलात्कार और हत्या के सदमे से उबर नहीं पाया है। हर माता पिता को अपने बच्चों की सुरक्षा की चिंता पहले से आज कहीं ज्यादा हो रही है, और ये सच पाकिस्तान का ही नहीं भारतीय समाज का भी है, जहां जानकारों का मानना है कि बच्चों का बचपन सुरक्षित नहीं रह गया है। पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार वसतुल्ला खान बता रहे हैं कि बच्चों के साथ आए दिन हो रहे ऐसे मामलों को देखते हुए खुद को बेबस महसूस कर रहे माता पिता आखिर क्या कर सकते हैं।
आइडियल दुनिया में होना तो ये चाहिए कि कोई भी हत्यारा किसी भी मासूम बच्चे का बलात्कार करके उसे कत्ल करने के बारे में सोचे तो खुद ही अपना मुंह पीट ले कि क्या गिरी हुई घटिया सोच है, छी 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 छी। लेकिन जब तक इस संसार के हत्यारे इतने दयालु और बढ़िया सोच के मालिक नहीं हो जाते और राष्ट्र में हर कमज़ोर के लिए न्याय का बोलबाला नहीं हो जाता, तब तक हम माता पिताओं को क्या करना चाहिए? क्या किस्मत को कोसते रहना चाहिए या फिर अपने बच्चों को खुले घूम रहे दरिंदों से बचाने और उनसे बचने की तरबियत देनी चाहिए? मगर इसके लिए सबसे पहले खुद की तरबियत ज़रूरी है। सबक नंबर एक, ये खन्नास दिमाग से निकाल दें कि हमारे बच्चे या बच्ची के साथ ऐसा कुछ नहीं हो सकता। दूसरा खन्नास अपने दिमाग से ये निकाल दें कि मेरे बच्चे के साथ अगर किसी की दुश्मनी हो सकती है तो वो कोई पराया पुरुष या महिला ही हो सकती है। अब ये बात पूरी तरह स्पष्ट हो चुकी है कि बच्चों की सुरक्षा की लंका ढाने के 92% जिम्मेदार रिश्तेदार या दूर पार के जानने वाले होते हैं, क्योंकि उन्हें खूब मालूम होता है कि बच्चे ने अगर किसी को उनके बारे में बताया भी तो कोई यकीन नहीं करेगा, उल्टा सब बच्चे को ही डांटेंगे, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, अंकल भला ऐसी घटिया हरकत क्यों करेंगे। अगर आपको ये डर है कि अपने बच्चे से हर मुद्दे पे दोस्त की तरह बात करना ठीक नहीं, इसके दिल से आपका आदर जाता रहेगा, तो ऐसे आदर का क्या करना जो आपके बच्चे को अंदर ही अंदर ख़त्म कर दे। ज़रा याद कीजिए अपना बचपन। हम माने या ना माने, मगर हम में से हर तीसरे या चौथे मर्द या औरत को बचपन में किसी अपने या गैर के हाथों कोई ना कोई हल्का या भारी तजर्बा ज़रूर हुआ होगा, जिसमें हमने खुद को बिल्कुल बेबस महसूस किया होगा, अपनी नज़रों में खुद ही गिर गए होंगे, ये सोच के चुप रहे होंगे कि किसी को बताया तो उल्टा वो हमारी सोच को घटिया बताएगा। यूं एक ऐसी फांस हमारे मन में अटक जाएगी जो मरते दम तक चुभती रहेगी। ऐसी तमाम औरतें और मर्द जो कच्ची उम्रों में किसी ख़राब तजर्बे से गुजर चुके हैं, क्या वो चाहेंगे कि उनके बच्चे या बच्चों के साथ भी वैसा ही हो और वो भी मेरी आपकी तरह अपना बाकी जीवन एक चुप जख्म की तकलीफ सहते सहते गुजार दें? तो फिर मुझे या किसी को बताए बगैर अपने बच्चों से दोस्ती कर लीजिए और इस वादे पे कीजिए कि अगर तुम्हारे साथ घर के अंदर और बाहर ऐसा कुछ होता है तो मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा, भले कोई और ना भी खड़ा हो। बस इतना ही तो करना है आपको अपने बच्चों के लिए, ताकि वो किसी ऐसे ख़राब तजर्बे या हादसे से बच जाएं जिससे आप और मैं खुद को नहीं बचा पाए। यही एक तरीका है इंसानों के जंगल में रहने वाली 7 वर्ष की जैनब और 10 वर्ष के मोहित की मदद करने का।
ये थी वसतुल्ला खान की साप्ताहिक डायरी। दक्षिण अफ्रीका के साथ टेस्ट सीरीज में पीछे चल रही भारतीय टीम सेंचुरियन के मैदान पर दूसरे टेस्ट में क्या कमाल कर पाएगी और अंडर 19 विश्व कप में भारतीय खिलाड़ियों का कैसा है प्रदर्शन, खेल की ये तमाम खबरें जानने के लिए आइए सुनते हैं साप्ताहिक कार्यक्रम खेल और खिलाड़ी।
खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम के साथ मैं हूं आदेश कुमार गुप्त। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सेंचुरियन में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन कल भारत ने अपनी पहली पारी में 5 विकेट खोकर 183 रन बना लिए थे। स्टंप के समय कप्तान विराट कोहली 85 और हार्दिक पांड्या 11 रन बनाकर नाबाद थे। मुरली विजय ने 46 रन बनाए। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 335 रन पर समाप्त हुई। आर अश्विन ने 113 रन देकर 4 और ईशांत शर्मा ने 46 रन देकर 3 विकेट हासिल किए। फिलहाल भारत पहली पारी के आधार पर दक्षिण अफ्रीका से 152 रन पीछे है और उसके 5 विकेट बाकी हैं। और अब समीक्षा, धरे रह गए बड़े बड़े दावे और फिर याद दिलाई भारत ने भूली दास्तां। घर के शेर बाहर ढेर, ऐसे जुमले ना तो सुनने में अच्छे लगते हैं और ना ही सुनाने में, खासकर उस टीम के बारे में जो साल 2017 में टेस्ट एक दिवसीय और 2020 क्रिकेट में छाई रही। और ये टीम कोई और नहीं, भारतीय क्रिकेट टीम थी। लेकिन दक्षिण अफ्रीका में जिस अंदाज में टीम ने पहले टेस्ट मैच में घुटने टेके, उससे खुद कप्तान विराट कोहली के दावों की हवा निकल गई।
The kind of bowling attack we have now and the kind of balance we have in the side, we definitely believe that we can can win here. We're not thinking about whether we're playing in South Africa or any other country.
तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच में भारत के सामने जीत के लिए 208 रनों का लक्ष्य था, लेकिन पूरी टीम केवल 135 रनों पर सिमट गई। दक्षिण अफ्रीका के वर्नॉन फिलेंडर अपनी तेज रफ्तार वाली गेंदों के दम पर विकेट के सौदागर साबित हुए। उन्होंने दूसरी पारी में 42 रन देकर 6 विकेट झटके। उनका बखूबी साथ देते हुए वॉर्ने मोरकल और कैगिसो रबाडा ने भी दो दो विकेट अपनी झोली में डाले। फिलेंडर, मोरकल और रबाडा की तकड़ी ने ऐसे समय कप्तान फेफ डु प्लेसी को राहत की सांस दिलाई जब डेल स्टेन चोटिल होकर मैच और पूरी टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए। अब सवाल ये कि जब जीत के लिए पूरे 1.5 दिन का समय था तो तमाम भारतीय बल्लेबाज क्यों विकेट पर टिकने, जमने और रन बनाने का दम नहीं दिखा सके। क्रिकेट समीक्षक अयाज मेमन कहते हैं,
पिच में कुछ जान थी, सीम मूवमेंट भी मिल रहा था, टेस्ट मैचेस में एक इम्पोर्टेंस होता था वो अब कम हो गया डिफेंसिव बैटिंग का, तो स्ट्रोक ज्यादा खेले जाते हैं, रिस्क ज्यादा लिए जाते हैं और विकेट जो है ज्यादा जल्दी गिर जाती है अगर बॉलर्स को मदद मिलती है, और दोनों ही टीम्स में हम देख रहे हैं।
अब ये बात तो सच है कि भारतीय गेंदबाजों ने भी दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों को दूसरी पारी में 130 रनों पर समेटकर अपनी काबिलियत का एहसास कराया, वरना तो डीन एल्गर, मार्ट्रम, हाशिम आमला, क्विंटन डिकॉक और फेफ डु प्लेसी किसी भी गेंदबाजी की धज्जियां उड़ा सकते हैं। दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में ऐसा करके उन्होंने दिखाया भी। दूसरी तरफ विराट कोहली ने माना कि बल्लेबाजों ने लुटिया डुबोई, लेकिन इस बात से इनकार किया कि टीम की तैयारी में कोई कमी थी।
वेरी वेल प्रिपेयर्ड, आई डोंट थिंक वी फेल्ट लैक ऑफ प्रिपरेशन, इवन दे गॉट आउट फॉर 130 इन द सेकंड इनिंग्स एंड लुक वी लेट आवरसेल्व्स डाउन विद द बैट फॉर श्योर।
अब दूसरे टेस्ट मैच में भारत पलटवार कर सकता है या नहीं, इसके लिए बस थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि अपनी ही जमीन पर पटियल विकेटों पर कामयाबी की कहानी लिखने वाली भारतीय टीम का विदेशी जमीन पर घसियल तेज विकेट पर असली इम्तिहान तो बस अभी शुरू ही हुआ है। उधर न्यूजीलैंड में खेले जा रहे अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट में कल भारतीय टीम ने अपना अभियान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार जीत से किया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पूरे 100 रन से हराया। ऑस्ट्रेलिया के सामने जीत के लिए 329 रनों का लक्ष्य था, लेकिन वो 42.5 ओवर में 228 रन बना सकी। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कप्तान पृथ्वी शॉ के 94, मनजोत कालरा के 86 और शुभमन गिल के 63 रनों की मदद से निर्धारित 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 328 रन बनाए थे। वहीं इंग्लैंड ने एशेज टेस्ट सीरीज तो गंवाई, लेकिन उसने कल मेलबोर्न में खेले गए पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से मात दी। इंग्लैंड को जीत के लिए 305 रनों का लक्ष्य मिला, जिसे उसने सलामी बल्लेबाज जेसन रॉय के 180 और कप्तान जो रूट के नाबाद 91 रन की मदद से 48.5 ओवर में हासिल कर दिया। वहीं दृष्टि बाधित विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट में कल भारत ने नेपाल को 8 विकेट से हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। भारत के सामने जीत के लिए 157 रनों का लक्ष्य था, जो उसने अजय गारिया के 54 और महेंद्र के नाबाद 40 रन की मदद से 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। खेल और खिलाड़ी कार्यक्रम में आज बस इतना ही,
और अब कार्यक्रम की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। इसराइली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू अपने भारतीय दौरे पर कल नई दिल्ली पहुंचे। आज वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करेंगे। यरूशलम में अपना दूतावास खोलने के अमरीकी फैसले के खिलाफ फलस्तीनी नेताओं की बैठक में फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को निशाने पर लिया है। हवाई में मिसाइल हमले की गलत चेतावनी जारी होने की जांच कर रहे एक अमरीकी अधिकारी ने कहा है कि इस तरह की गलती को रोकने के लिए राज्य में उचित सुरक्षा उपाय नहीं है। सरकार के आर्थिक कदम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे युवाओं की भीड़ को तितर तर करने के लिए ट्यूनिशिया में पुलिस ने आंसू के गैस के गोले छोड़े हैं। पेरू में 7.1 तीव्रता के भूकंप के बाद उसके राष्ट्रपति देश के दक्षिणी भाग में नुकसान का जायजा लेने के लिए रवाना हुए हैं। शीतकालीन ओलंपिक में उत्तर कोरिया के भाग लेने को लेकर दक्षिण कोरिया का प्रतिनिधिमंडल उत्तर कोरिया के साथ बातचीत करने के लिए सीमा पर जा रहा है। बीबीसी समाचार।
तो इसी के साथ नमस्कार, भारत की सभा यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया देवाशीष कुमार ने और फेसबुक पर इसे आप तक पहुंचाया गुरप्रीत कौर ने। तो अब अमरीश द्विवेदी को दीजिए इजाजत, और देश विदेश की खबरें जानने के लिए आइए हमारी वेबसाइट bbchindi.com पर। नमस्कार।